अखिल प्रताप अच्छी तरह से समझ गए थे कि रतन सिंह ने पुरातत्व विभाग को इस ऑब्जेक्शन के लिए अच्छा खासा पैसा दिया है, पर वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि एक दिन के पकवान के लिए कोई रोज का खाना नहीं छोड़ सकता। ये ऊपरी आमदनी तो बस एक दिन मिलने वाली थी या फिर मिल चुकी थी, पर वेतन हर महीने चाहिए था। वो गहरी नज़रों से सीनियर अधिकारी की तरफ देख रहे थे और उससे अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। तो सर, हम अपनी रिपोर्ट में ये लिख दें कि उस पैलेस में कुछ भी अवांछित हमें नहीं मिला, उसकी क्लियरेंस कर दें, अधिकारी ने पूछा। रिपोर्ट तो आपको यही बनानी है, पर अभी नहीं, जब हम कहेंगे तब। अभी तो फिलहाल के लिए हम खुद राजगढ़ जाकर देखना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सारे संभावित पहलुओं को एक बार अच्छे से देख लेना सही रहेगा। गेस्ट हाउस से लेकर हमारे वहां रुकने ठहरने की व्यवस्था पूरी तरह से सही करवाइए। हमारी टीम कल सुबह तक राजगढ़ पहुंच जाएगी, अखिल प्रताप ने तुरंत निर्णय लेते हुए कहा। जी सर, अधिकारी समझ गया था। ऑफिस की कार्रवाई पूरी करके अखिल प्रताप ने खुद अपनी तरफ से एक मेल गवर्नमेंट को डाल दी। उनकी पूरी टीम, जो कि आज ही वापस न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाली थी, उसमें से कुछ सिलेक्टिव को उन्होंने दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा, जिसे वो जरूरत पड़ने पर आगे बुलाने वाले थे। टीम एक दो दिन के बाद राजगढ़ पहुंचने वाली थी, पर अब अखिल प्रताप का मन एक पल के लिए कहीं और ठहरने का नहीं हो रहा था। वो ऑफिस से निकलते ही तुरंत अपनी गाड़ी से राजगढ़ के लिए निकल चुके थे। गाड़ी राजगढ़ की तरफ बढ़ रही थी और उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इंसान अपनी समझ से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के हर संभव उपाय करता है। कई सारी जीवन बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड से लेकर अपने वर्तमान में से एक हिस्सा काटकर भी वो अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का उपाय करता है। परंतु भविष्य में क्या होने वाला है, ये तो काल के गर्भ में छिपा होता है, और नियति जब अपनी मनमानी करने पर आती है तो इंसान के सारे मंसूबों, उसके बनाए हुए सारे किले को ध्वस्त कर देती है। इंसान के सारे दांव पेच और उसके बड़े बड़े प्लान फेल हो जाते हैं। यही हाल अभिमन्यु प्रताप के साथ हुआ था। अपनी तरफ से अभिमन्यु प्रताप ने अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर हिस्सेदारी देने के लिए वसीयत बना दी थी, लेकिन उन्होंने अपने बाद की वसीयत बनाई थी। ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु पहले हो जाएगी और शत्रुपा देवी तब तक जीवित रह जाएगी, वरना अगर उन्होंने सुगंधा देवी के हाथों से क्रय विक्रय की शक्ति छीन ली थी तो शत्रुपा देवी के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करके जाते। पर सुगंधा जी तो साथ ही चली गई थी और शत्रुपा देवी जीवित बची हुई थी। अखिल प्रताप को अच्छी तरह से वो दिन याद था जब वो हॉस्टल में ही थे और उन्हें ये खबर मिली कि उनके पिता और छोटी माँ का देहांत हो गया है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ पता नहीं चल सका। यहाँ तक कि शत्रुपा देवी ने उस मुश्किल घड़ी में भी अपने दिमाग को ठिकाने पर रखते हुए ऐसे इंतजाम किए थे कि अखिल प्रताप तक ये सूचना भी ना पहुंचे। वो सारे क्रियाकर्म मुश्किल से 9 साल के विक्रम के हाथों करवाना चाहती थी। परोक्ष रूप से वो अभिमन्यु प्रताप के बाद राजगढ़ का संपूर्ण उत्तराधिकार विक्रम के हाथों में सौंप रही थी। समर्थ सिंह और पुलकित सिंह सब कुछ जानते समझते हुए भी इस मामले में अपने आप को बोलने से रोक रहे थे। एक तो ये दुख की घड़ी थी और दूसरे में शत्रुपा देवी का व्यवहार। जिस तरह से अखिल प्रताप का नाम लेते ही वो अपना रोना भूलकर गुस्से में आ जा रही थी, अखिल प्रताप को और उनकी माँ को कोसना शुरू कर दे रही थी, ऐसे में कुछ भी बोलने का मतलब महाभारत होना तय था। पर यह सही नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए 9 साल के बच्चे से सारे कर्म करवाना किसी को उचित नहीं लग रहा था, और दूसरे में ये अखिल प्रताप का अधिकार था। खुद विक्रम कई बार अखिल के लिए पूछ चुके थे। ऐसे में किसी रिश्तेदार ने अखिल प्रताप के बारे में पूछ लिया, अब तो शत्रुपा देवी के तन बदन में आग लग गई थी। वो ब्राह्मण की लड़की, पता नहीं उसने कौन सा जादू मंत्र मेरे बेटे पर किया था कि वो जहां जाती थी उसके पीछे पीछे मेरा बेटा चला जाता था। यहां तक कि अपने मरने के बाद भी उसने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा। पहले खुद तो चली गई और पीछे से मेरे बेटे को भी बुला लिया, ये नहीं सोचा कि उसके बिना मेरा क्या हाल होगा। यहां तक कि इस 9 साल के मासूम पर भी उसकी दया नहीं हुई। पहले ही वो ब्राह्मण मेरे पति को खा चुका है, तो तुम सब क्या चाहते हो कि अब उसी के खून को मैं बुलाकर अपने इकलौते बचे हुए बच्चे को भी खो दूं? क्या मुझे भी तुम सब मारना चाहते हो? शत्रुपा देवी ने गुस्से में पूछा। अब तो कुछ भी बोलने का कोई भी मतलब नहीं बनता था, सारा परिवार चुप हो गया। लेकिन जिस वकील ने अभिमन्यु प्रताप की वसीयत बनाई थी, उनकी मृत्यु की सूचना पाते ही अखिल प्रताप को टेलीफोन पर तुरंत ये सूचना दे दी और उसी समय उन्हें राजगढ़ किसी भी हालत में पहुंचने के लिए कहा। वो बुंदेला एम्पायर के सबसे बड़े और पुराने लीगल एडवाइजर थे। मुश्किल से 17 साल कुछ महीने के अखिल प्रताप को जब ये सूचना मिली थी तो उनके पैरों के नीचे की जमीन और सर के ऊपर का आसमान उलट गया था। वो बदहवास की हालत में तुरंत दौड़ते हुए राजगढ़ आए। यहाँ पर शत्रुपा देवी ने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली थी, यहाँ तक कि विक्रम के हाथों में अग्नि प्रचलित करने के लिए लकड़ी भी थमा दी गई थी। रुक जाओ विक्रम, शमशान घाट पर अखिल प्रताप ने विक्रम प्रताप को रोक दिया। ऐसे ही नहीं कोई अपना घर छोड़ता। अब हुआ महाभारत।